सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। आज हम चर्चा करेंगे भारत और दक्षिण कोरिया यानी रिपब्लिक ऑफ कोरिया के रिश्तों की, जो अब एक नए दौर में प्रवेश करते दिख रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग इस समय भारत के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्हें राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बातचीत हुई। इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं और दोनों देशों ने साफ कहा है कि अब यह रिश्ता सिर्फ ट्रस्टेड पार्टनरशिप तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में बदला जाएगा। ट्रेड को $25 बिलियन से बढ़ाकर $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य हो, या फिर AI, सेमीकंडक्टर्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी में साथ काम करने की बात, दोनों देश अब नए अवसरों की तलाश में हैं।
भारत और कोरिया का बायलेटरल ट्रेड आज $27 बिलियन तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे $50 बिलियन तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दोनों देशों के बीच फाइनेंशियल फ्लोस को सुगम बनाने के लिए हमने भारत कोरिया फाइनेंशियल फोरम की शुरुआत की है। बिजनेस सहयोग को बल देने के लिए हमने एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी का गठन किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग शुरू कर रहे हैं। कोरिया की कंपनी खासकर SME की भारत में एंट्री सहज करने के लिए हम कोरियन इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी स्थापित करेंगे।
साथ ही इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत इस दिशा में एक बड़ा अहम कदम माना जा रहा है।
AI, सेमीकंडक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में हम MOU कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे।
तो कोरिया के राष्ट्रपति का यह भारत दौरा दोनों देशों के रिश्तों में क्या एक नया मोड़ साबित कर पाएगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजदूत श्री SR तायल जी। अम्बेसडर, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद।
सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अगर आप ये समझा सकें कि 8 साल बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का भारत दौरा हो रहा है और जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनका ये पहला भारत का दौरा है, रिश्तों में एक नई ऊर्जा के संकेत के तौर पर ये कितना महत्वपूर्ण है?
ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है और नई ऊर्जा भी ये भारत और कोरिया के संबंधों को देगा और नई दिशा भी देगा। पहले ही संबंध बहुत ही मजबूत हैं, बहुत पक्के हैं, बहुत ही दोस्ताना हैं और अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी दोनों का एक आदान प्रदान है। और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एक ये विश्वास भरी पार्टनरशिप से भविष्य की तरफ देखने वाली एक पार्टनरशिप तो बनेगी, क्योंकि इस समय जो दुनिया में हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं और नए नए आयाम अर्थव्यवस्था में भी आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नए अर्थव्यवस्था के रूप दुनिया के सामने आ रहे हैं, वहाँ कोरिया भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं और आज भी कहा कि विकसित भारत बनने में हमारे सब मित्रों का उसमें योगदान रहेगा, समावेश होगा उनके हितों का और भारत के हितों का। और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2015 में भारत और कोरिया के बीच में स्थापित हुई थी, वो हमारे प्रधानमंत्री की कोरिया की प्रथम यात्रा थी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में, तो उसका अब दूसरा दशक अब शुरू हो रहा है। तो उसमें क्या क्या नया करना है, उसमें कई मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग आज जो उन पर हस्ताक्षर हुए, जो दिशा दिखाते हैं कि भारत और कोरिया के संबंध किस तरह आगे बढ़ेंगे।
अम्बेसडर, अगर आर्थिक और व्यापारिक पहलू की बात करें तो 2030 तक ट्रेड को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किन सेक्टर्स में आपको ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं जिससे कि हम अपने ट्रेड के अमाउंट को सीधा डबल कर सकते हैं अगले आने वाले 4 सालों में?
थोड़ा ये महत्वाकांक्षी लगता है क्योंकि अभी हम 27 बिलियन पर हैं और 50 बिलियन तक जाने में, पर जो कहां प्रगति हो सकती है, भारत इस समय बहुत निर्यात जो करता है कोरिया को, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेफ्था वगैरह का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसकी मात्रा बढ़ सकती है और वहां से जो भारत को निर्यात होता है वो तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उपभोक्ता सामग्री है, वो सब यहाँ आते हैं। और उसमें जो भारत का एक इच्छा रही है और दिशा रही है कि कोरियन कंपनी भारत में ही अपना सामान बनाए, चाहे वो हम सब देखते हैं ह्यूंडई, सैमसंग, एलजी, इन सब का सामान भारत में बहुत आम हर जगह मिलता है।
जी
और उनका निवेश करने का ढंग बहुत अच्छा है, क्योंकि 70-80% वैल्यू एडिशन जो है वो भारत में ही होता है। अगर हिंदी कार आप खरीदते हैं तो 80% उसका जो भी कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बनते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एक बहुत बड़ी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री नोएडा में, NCR में खोली है। तो भारत का ये प्रयत्न है कि जो कोरिया के साथ हमारे आर्थिक संबंध, व्यापारिक संबंध, निवेश के संबंध आगे बढ़े, उसमें केवल वो व्यापार का ही आदान प्रदान ना हो, निवेश भी हो और भारत में मैन्युफैक्चरिंग, उसकी बहुत ही भारत को आवश्यकता है। और वही भारत का एक प्रयत्न रहता है, क्योंकि अगर हमें विकसित भारत की तरफ 2047 तक पहुंचना है तो उसमें आत्मनिर्भर भारत होना और मेक इन इंडिया, उसके दो बहुत बड़े स्तंभ हैं। और हमारा ये प्रयत्न रहता है कि जितने हमारे मित्र देश हैं, कल कोरिया उसमें अग्रणी है, वो जो भी निवेश भारत में करें और भारत के साथ व्यापार की जो भी रणनीति बनाए, उसमें भारत के इस एस्पिरेशन को, इस ऑब्जेक्टिव को, इस गोल को भी समावेश करें।
बिल्कुल, इसी को ध्यान में रखते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ली ने इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च किया। इसे आप कितना बड़ा गेम चेंजर मानते हैं एम्बेसडर, और खास करके क्योंकि इसका फोकस सेमीकंडक्टर्स, एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी पर है, तो इन क्षेत्रों में दोनों देश साथ मिलकर कितना आगे बढ़ सकते हैं, खासकर अगर हम अपने विकसित भारत विजन के कॉन्टेक्स्ट में इसको आपसे समझना चाहें तो।
देखिए, विकसित भारत के दोनों ही आयाम होंगे, ट्रेडिशनल इकोनॉमी भी होगी और नए आने वाली इकोनॉमी भी होगी। तो इसलिए एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमिटी का भी गठन हुआ है, जिसमें कि अगर जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें कोई गतिरोध हो, कुछ बाधा हो, तो उसको ये दूर करेगा। पर भविष्य की तरफ देखते हुए जो डिजिटल ब्रिज की बात है, वो एक बहुत ही अहम निर्णय है, क्योंकि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब की बात करें, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि इस समय अमेरिका एक दिशा में जा रहा है, चीन की ने भी बहुत अच्छी प्रगति की है, पर इस दिशा में डिजिटल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो भी एक मल्टीपोलर हो, मल्टी सेंट्रिक हो, और जो और अग्रणीय देश हैं इन टेक्नोलॉजीज में, जैसे भारत और कोरिया, वो भी साथ मिलकर काम करें, तो वो भी एक तीसरा पोल बन सकते हैं। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बहुत टैलेंट है और कोरिया में टेक्नोलॉजी है, तो दोनों मिलकर एक अपनी एक नई दिशा ले सकते हैं, जिसमें कि केवल अमेरिका और चीन ही नहीं अग्रणी हो, बल्कि भारत और कोरिया भी मिलके, शायद और सब कुछ देशों के साथ भी एक पोल हो और अपने निर्णय स्वयं ले सके और अपनी टेक्नोलॉजी स्वयं डेवलप करें और उसका इस्तेमाल भी करें।
दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ भविष्य और टेक्नोलॉजी पर फोकस रहा आज के जॉइंट स्टेटमेंट में, वहीं दोनों देशों ने अपने गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों को भी उतनी ही अहमियत दी है। आइए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
भारत और कोरिया के बीच हजारों वर्ष पुराने सांस्कृतिक संबंध है। 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरीरत्ना और कोरिया के राजा किम सुरो की कहानी हमारी साझा विरासत है। आज भारत में के पॉप, के ड्रामा बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं। उसी तरह कोरिया में भी भारतीय सिनेमा और संस्कृति की पहचान बढ़ रही है। हमें बहुत खुशी है कि प्रेसिडेंट ली खुद भारतीय सिनेमा के प्रशंसक है। इस कल्चरल कनेक्ट को मजबूत करने के लिए हम 2028 में भारत कोरिया फ्रेंडशिप फेस्टिवल आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट मजबूत करने के लिए हम एजुकेशन, रिसर्च सहयोग और टूरिज्म को भी बढ़ावा देंगे।
अम्बेसडर, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों की भी बात हुई, भारत और कोरिया के रिश्तों के संबंध में आज ये कितने प्रासंगिक हैं, और लोगों के बीच, खास करके अगर हम बात करें जिस तरह का संपर्क रहा है दोनों देशों में, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, क्या इसमें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है?
जी हाँ, देखिए, इस समय जो निर्णय दोनों नेताओं ने लिए, उसमें कल्चर एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की बात की गई, कि क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, जैसे अगर आप कोरिया में देखें तो के पॉप और भारत में बॉलीवुड, ये बहुत बड़ी क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं, और इनको कैसे मिलाया जाए और कैसे उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो कोरिया के राष्ट्रपति ने घोषणा किया कि वो एक कोरिया बॉलीवुड सेंटर बॉम्बे में बनेगा। तो इस समय थोड़ा सा जो नई दिशा हमने देखी कि कल्चरल कनेक्ट की तो बात होती है, पर उसको एक इंडस्ट्री के रूप में देखा जाए।
अम्बेसडर, अक्सर हम देखते हैं कि देशों के साथ डायस्पोरा हमारा एक बहुत बड़ा कनेक्ट होता है। क्या आपको लगता है कि भारतीय डायस्पोरा जो कोरिया में है और कोरियाई समुदाय जो भारत में है, इन्हें ब्रिज बिल्डर्स के रूप में और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं?
इसमें भारत का जो डायस्पोरा कोरिया में है और जो भारत का डायस्पोरा दूसरे देशों में है, उसमें थोड़ा सा अंतर है कि बहुत पुराने कोरिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोग बहुत कम हैं, और जो वहाँ जाते हैं प्रोफेशनल जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, वो और रिसर्च करने जाते हैं, वो वहाँ कुछ साल रहकर वापस आ जाते हैं। तो इसलिए उनका बहुत अधिक रोल वहाँ की राजनीति या वहाँ की अर्थव्यवस्था पर नहीं है, पर एक प्रेजेंस वाली जो बात होती है कि जहाँ भी वो काम करते हैं, मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय में काम करते हैं या किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं या किसी उद्योग में काम करते हैं, तो एक गुडविल वहाँ पे वो भारत के प्रति पैदा करते हैं। और इसी तरह जैसे कोरियन डायस्पोरा मेरे ख्याल से अब 15-20 हज़ार यहाँ पर भारतवर्ष में है, चेन्नई के आसपास NCR में है, पूना में है, उनके अब आप देखेंगे कि कोरियन रेस्टोरेंट हर जगह खुलने शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे वो कोरियन कल्चर को, कोरियन संस्कृति को, कोरियन खाने को, फिल्में तो पहले ही बहुत लोग यहाँ देखते हैं, टीवी पे बहुत अधिक कोरियन ड्रामा पहले ही बहुत हमारे जनता उसको देखती है, के पॉप पूरे आप देखें तो बहुत ही पॉपुलर है,
बिल्कुल
पर उसमें डायस्पोरा उसको और एक स्ट्रेंथ देती है।
आज की शिखर वार्ता जो हुई प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ली के बीच, उसमें वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई, खासतौर पर मिडल ईस्ट की स्थिति को लेकर, जहां दोनों नेताओं ने शांति और स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया। चर्चा में आगे बढ़े इससे पहले आइए सुनते हैं कि प्रेसिडेंट ली ने इस बारे में क्या कहा।
Prime Minister Modi and I exchanged our views on the recent events unfolding in the Middle East and agreed that restoring stability and peace in the Middle East is crucial to global security and the economy. I also spoke to the Prime Minister about the Korean government's efforts to build peace on the Korean Peninsula and extended our gratitude to the Indian government for their consistent support on this matter. Korea looks forward to the constructive role that India will continue to play for peace on the peninsula and within the region.
अम्बेसडर, जिस टाइम पर ये मीटिंग हो रही है, पूरा विश्व परेशान है क्योंकि वेस्ट एशिया में जो हो रहा है और जिस तरह से वहां के कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट वर्ल्ड पर हो रहा है, मिडल ईस्ट जैसे मुद्दों पर भारत और कोरिया का साथ आना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में?
ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत, कोरिया, जापान, मैं कहूँगा चीन भी, सिंगापुर, ये बहुत तेल आयात करते हैं पश्चिम एशिया से, और जो भी वहाँ पे इस समय चल रहा है उसका दुष्परिणाम तो हम लोग भुगत रहे हैं, पर वहाँ जो हो रहा है उस पर कोई हमारा दखल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह सोचना कि ये कैसे इस समस्या से निपटा जाए, और उसमें दोनों नेताओं ने दो चीज़ें हुई, एक तो किस तरह वेस्ट एशिया में शांति बहाल हो दोबारा, उस तरह कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, दूसरा किस तरह अपनी जो निर्भरता है पश्चिम एशिया के ऑयल और गैस पर उसको कम किया जाए, और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन, भारत में भी बहुत काम हो रहा है, कोरिया में भी बहुत काम हो रहा है, साथ मिलकर बहुत अच्छे परिणाम और बहुत जल्दी सामने आ सकते हैं। उसके अलावा अब देखिए आणविक ऊर्जा दोबारा बहुत तेजी से दुनिया के पटल पर वापस आ रही है, यूरोप के लोग भी अब उधर वापस जा रहे हैं, और जो नया उसमें भारत को भी बहुत अनुभव है न्यूक्लियर एनर्जी में, और कोरिया को भी बहुत अनुभव है, उनका करीब 60% बिजली है वो न्यूक्लियर ऊर्जित होती है, और नया जिस तरफ जो मॉड्यूलर न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है कि 50 से 100 MW के पावर स्टेशन बने, उसमें भारत और कोरिया मिलकर अगर काम करें तो बहुत तेजी से उस दिशा में प्रगति हो सकती है।
बिल्कुल, तो चर्चा से ये साफ है कि भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते एक नए मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही चर्चा को विराम देते हैं। अम्बेसडर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में